Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you and any questions that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444 and 2342-1050. Once again, 2331-4444 and 2342-1050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
धन्यवाद. नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजा अंक के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं और आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं. कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज सोमवार है और आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं. ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं. आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं. नंबर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें. और आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर बाजार विशेषज्ञ विजय भूषण. विजय जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
वार्म वेलकम विजय.
थैंक यू सो मच एंड इट्स अ रियल प्लेजर बीइंग विद यू ऑन दिस शो.
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख.
सेंसेक्स एंड निफ्टी एंड फ्लैट. Sensex closes at 80,426. Nifty settles at 24,573. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman chairs review meeting. Public sector banks register highest ever net aggregate profit of 1.45 lakh crore rupees in financial year 2024. And Brent and WTI crude traded more than 0.5% down in global crude markets.
घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 80,426 पर बंद और निफ्टी 24,573 पर रहा. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2024 में अब तक का सबसे अधिक 1,45,000 करोड़ रुपए का शुद्ध कुल मुनाफा दर्ज किया. और वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में ब्रेंट और WTI क्रूड 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार पर. घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज कमजोर कारोबारी सत्र में लगभग सपाट बंद हुए. सत्र की शुरुआत सकारात्मक रही. सेंसेक्स 80,680 और निफ्टी 24,636 पर खुले और सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहे थे. बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 12 अंक की मामूली गिरावट के साथ 80,425 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 0.13% की मामूली बढ़त के साथ 24,573 पर रहा. एनएससी में 160 कंपनियों अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर रहीं और 17 कंपनियों ने निचले स्तर को छुआ. बात करें बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक की तो मिड कैप सूचकांक में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और वहीं स्मॉल कैप में भी 1.33% की उछाल देखने को मिली.
डोमेस्टिक स्टॉक इंडेक्सेस सेंसेक्स एंड निफ्टी एंडेड फ्लैट इन लैकलस्टर ट्रेडिंग सेशन. द सेशन बिगन पॉजिटिव विद द सेंसेक्स ओपनिंग एट 80,680 एंड द निफ्टी एट 24,636 बट ट्रेडिंग रिमेन्ड रेंज बाउंड थ्रू आउट द डे. FIIs remain net sellers, offloading 8,616 crore rupees, while DIIs continued buying, acquiring 10,560 crore rupees. At the closing bell, the BSE Sensex shed 12 points or 0.02% to close at 80,425, while the NSE Nifty added 32 points, or 0.13%, to settle at 24,573. In NSE, 160 companies hit their 52-week high, 17 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose more than 0.5%, and the small-cap index surged 1.33%. In the Sensex index, 18 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were Tata Steel, nearly 3%, TCS, more than 1.5%, and NTPC and JSW Steel, more than 1%. Conversely, the major laggards were Mahindra & Mahindra, more than 2.5%, IndusInd Bank and Axis Bank, more than 1%, Bharti Airtel, Tata Motors and ICICI Bank fell 1%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors logged gains. The top gainers were metal, more than 2%, oil and gas and energy, more than 1.5%. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,165 companies, shares of 2,710 companies advanced, 1,316 declined, and 139 remained unchanged.
जी, और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं. कोलकाता से अतानु साहा हमारे साथ जुड़े हैं.
गुड इवनिंग सर.
जी, सवाल पूछिए.
यस, गुड इवनिंग. My question is, which are the vital indicators of the bank health, our Indian bank health? Which are the vital indicators of the our bank health, private and also in PSU bank? Thank you, sir.
I think you'll have to repeat your question. I got a little confused because
I think we've lost touch with him, Vijay. In the meantime, we'll just give you the forex update.
जी, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत होकर 83.87 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. डॉलर इंडेक्स अंतरदिवसीय कारोबार के दौरान 0.25% की गिरावट के साथ 102.2 पर रहा.
So, Vijay, this week is going to be interesting because there will be a focus on the release of the US Fed meeting minutes, with the analyst anticipating market consolidation within a wider range influenced by global factors. What's your take? We will discuss this after we've taken this caller from Bhopal. Shankar, a warm welcome.
Good evening, Market Mantra team.
Good evening.
Sir, my question is about US election. How will it impact our market if Mr. Trump comes or Ms. Kamala Harris comes? In both cases, will it be green all the board, or Trump will have some bad impact on our market? And second question is, if Trump comes and there is a threat to their economy, could they decide something like dollar demonetization so that all the dollars which are floating illegally worldwide can be scrapped? कुछ इसकी पॉसिबिलिटी आपको लगती है, क्योंकि हमने कहीं सुना है नेट पे चल रहा है कि ट्रंप आया तो डिमोनेटाइज कर देगा डॉलर को, सिर्फ लीगल डॉलर विल बी एंटरटेन. थैंक यू.
बट बिफोर दैट शंकर जी, आई थिंक विजय विल आंसर द मिनट्स ऑफ द यूएस फेड. दैट इज अ बिगर कंसर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाट डू यू हैव टू से विजय? वन अबाउट द यूएस फेड मीटिंग मिनट्स दैट विल बी रिलीज्ड दिस वीक, एंड टू व्हाट शंकर जी हैज आस्क्ड यू about the outcome of the elections.
Well, I think as far as the Fed is concerned, it's a very, very significant, decision. And people are eagerly awaiting these minutes because there is widespread belief that this time they will really talk about, bringing down the interest rates in September, and not just by the 0.25%, but by 0.5%. So I think this will be watched very closely in terms of what are the minutes. As far as the US elections are concerned, frankly speaking, I don't think that is going to make a major shift as far as India is concerned. We've already had, Trump being there as a US president. And while there is some protectionist, protection walls may go up, I think overall India will not really be very badly affected. I don't think frankly, that will have much of a situation. As far as Kamala Harris is concerned, we really don't know about her so much. But we always believe that if a person of Indian origin who also has, Indian roots and who's conscious about that, that perhaps that will be more favorable for us.
But you have UK as a... Yes, part of UK. History.
So I think, but I don't think one should focus on what's going to happen in the US elections. Every person who, every world leader or any leader of any country always puts the interest of its own country first. So I think that we should be prepared for. And I think India's bargaining position is far more stronger than what it was earlier.
जी बिल्कुल. और गाजियाबाद से हमारे साथ रमेश जुड़ चुके हैं. रमेश जी स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए.
हेलो नमस्कार.
यार रमेश जी सवाल पूछिए अपना.
नमस्कार सर.
नमस्कार
सर, मेरे को एक सबसे एक सवाल पूछना है कि मुझे किस चीज में मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूं जिसमें जल्दी से ग्रोथ इन्वेस्ट जल्दी हो जाए, और जो हमारे एफडी वगैरह में हमारे को इतना नहीं मिल पाता, शेयर मार्केट समझ नहीं है अपने को, तो इसके लिए क्या आप हमें राय देंगे, क्या हम क्या कर सकते हैं कि सोना वगैरह खरीदें या उसकी सेल परचेज करें?
खैर, मेरे को ये लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट में अब बहुत ज्यादा हमारे निवेशकों के लिए उसमें बहुत जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो आप अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में कोई काम नहीं किया तो मेरा आपको यही क्या सलाह रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड से चालू करिए. और म्यूचुअल फंड्स में जो है उसमें क्योंकि आप एक शेयर नहीं बट एक बास्केट ऑफ शेयर्स आप खरीदते हैं तो उसमें सेफ्टी ज्यादा रहती है. और कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर की आप मदद लें इसमें, और ये आपके लिए लाभदायक रहेगा ऐसा मैं सोचता हूँ.
सो वी रेड इन द न्यूज विजय अबाउट FII is remaining the net sellers today, offloading 8,600 approximately crore rupees, whereas the DIIs continued their buying and they used up 10,560 crore rupees for acquiring the market. How do you see this? I mean, what should we do to bring back the FIIs, and what should we do to keep the interest of the DIIs intact?
Well, I think as far as the FIIs are concerned, we should do nothing. I would repeat, nothing at all. Because actually their actions are determined by their own perception of what is happening in the world. India, as you know, in terms of price earning, is considered to be an expensive market. But it is also the market which has given the maximum return to FIIs. Now, the selling in FIIs, particularly in this month, before today, was already 24,573 crores. Now, to add another 8,000 to that. So, but you will also notice that the domestic investors are coming in a big way, which I think is very good for any country. It's ultimately your own people that, you know, that are really attached to the country. So, FIIs have been selling. We have had in the years 21-22 and 22-23, in those years, they sold 4,72,000 crores of shares. So, it was absorbed by the, as far as the Indian investors are concerned. And the SIP book, which was 21,000 in June, has gone up to 23,000 in July. So, the strength of the Indian investor is there and they are backing the Indian companies. So we are looking at, even there's a FII selling, Indian market should do well.
So why are we so bothered about what happens in the US then? Whether the Fed does or not, you are saying don't worry about the FIIs. You need to concentrate on DIIs because they are doing well. So in that context, I'm saying then, should we be carried away by what is happening in the US?
No, the interest rates, yes. As I said, the Fed meeting is important because we are, the industry in India is wanting that the interest rates be brought down. And RBI really can't do that because they have to look at the currency. And, you know, you just saw in Japan, they brought up only by 0.25%. They, you know, after a long time, they raised the interest rates and they're against the dollar, their currency appreciated 13%. So I think RBI is conscious of this. However, if US brings down the interest rate, I think by the same percentage, our interest rates will come down here, which will be good for the markets. So I think we are not so much bothered about what is happening in the US, you know, in terms of politically. We are more bothered on their, you know, on their decision on interest rates.
जी, और कोलकाता से हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं. पंकज जी, शो में स्वागत है आपका. अपनी सवाल पूछिए.
जी नमस्ते, मैं पंकज.
जी, सवाल पूछिए.
मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा स्टेट बैंक में मेरा एक अकाउंट है, तो मैं वहां पर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ SIP के माध्यम से. तो मेरा प्रश्न यह है कि मैं यदि मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो क्या वहां पे मैं किस सेक्टर को मैं इन्वेस्ट करूँ, ये क्या मेरा राइट है चॉइस करने का, या फिर ये लोग बैंक ही अपने मन से उसमें इन्वेस्ट करेंगे? थैंक यू.
आपका पूरा राइट है. आप SBI में कह सकते हैं कि मैं किस सेक्टर में आप निवेश करना चाहते हैं, जो आपको उसमें ठीक लगता है उस सेक्टर में आप करिए. और अभी तो आप इस समय जो अपने लार्ज कैप शेयर्स हैं उसकी तरफ अपना रुझान रख सकते हैं.
जी, मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़े हैं. रत्नाकर जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए.
हेलो, गुड इवनिंग सर.
जी गुड इवनिंग.
हाँ, मेरा सवाल है कि जब भी एक शेयर का स्प्लिट का डिसीजन होता है, इट विल बी स्प्लिटिंग 10 शेयर 100 शेयर, तो जब भी स्प्लिट के पहले शेयर लेना उचित रहेगा कि आफ्टर स्प्लिटिंग के बाद शेयर लेना उचित रहेगा, ये एक सवाल है. और दूसरा सवाल है कि जब भी रेवेन्यू बढ़ता है, कि एक अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाता है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? थैंक यू.
देखिए, जो आप स्प्लिट की बात कर रहे हैं, तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि स्प्लिट के पहले लेना चाहिए या बाद में. लेकिन थ्योरेटिकली मैं कह रहा हूं, थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि जब स्प्लिट होता है तो वो जो शेयर है, मान लीजिए 10 रुपए से उसकी जो गिर के 1 रुपए हो जाता है, तो उसकी कीमत जो है वो वहां से 10% रह जाती है. मतलब 1000 रुपए का शेयर की जो उस समय कीमत होती है वो 100 रुपए रह जाती है. तो इसको ये जज करना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि स्प्लिट के बाद में अगर आप खरीदते हैं तो जो आपका निवेश की रकम होती है वो कम लगती है, तो इसलिए कुछ लोग स्प्लिट के बाद ही खरीदना उचित समझते हैं. लेकिन ये कोई कह नहीं सकता कि स्प्लिट होने के बाद शेयर का क्या रहेगा. काफी शेयर ऐसे हैं जो कि स्प्लिट होने के बाद नीचे दामों पर रहे, और उसके बाद अगर स्प्लिट के बिना अगर आप वैल्यू लेते तो उनकी उसके नीचे ही थी. तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहां पे आपको फायदा होगा.
जी, और
दूसरा एक चीज उन्होंने और पूछी थी रेवेन्यू से. तो जब कोई कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती है, मतलब उनके लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ता, तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा होता है. क्योंकि उसमें उनका जो है इनकम बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए वो कंपनी के लिए अच्छा है. हाँ, ये जरूर है कि उसके कारण भी समझने होते हैं. तो वैसे रेवेन्यू बढ़ना जो है वो अच्छा रहता है कंपनी के लिए.
जी, विजय जी, आपसे एक संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा कि अक्सर हमने देखा जब स्टॉक स्प्लिट की बात होती है, इवन बोनसेस जब इश्यू किए जाते हैं, तो अब जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं शेयर्स में. ऐसा क्यों देखने को मिलता हमें?
नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ जाता है. हाँ. लोग जैसा वो कह रहे थे, कुछ लोग प्री स्प्लिट मतलब स्प्लिट से पहले लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि हमारे को फायदा होगा, और कुछ लोग उसी तरह से बोनस में भी यही होता है. लेकिन स्प्लिट या बोनस के बाद जो कीमत होती है उसमें आपको फायदा या नुकसान हो, वो दोनों तरफ ही होता है. कई बार फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है. तो इसके लिए तो ये है कि अगर आपको वो जो कंपनी है वो अगर आपको अच्छी लगती है और जहां पे आपको लगता है कि उनके आगे आप उस निवेश से आपको फायदा होगा, तभी आप इसमें करिए. क्योंकि वो स्प्लिट हो रही है या क्योंकि उसमें बोनस आ रहा है, उस वजह से उस शेयर को मत लीजिए.
जी, गुरुनाथ हमारे साथ थाने से जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले हम रुख कर लेते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजारों का। 5 प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से 3 आज लाभ के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंगसेंग 0.79% बढ़ा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में 0.49% की वृद्धि दर्ज की गई और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.08% की मामूली बढ़त देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर जापान का निकेई 1.8% टूटा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.86% की कमजोरी देखी गई। यूरोप के 3 प्रमुख शेयर बाजारों में से 2 आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.41% के लाभ में रहा और जर्मनी का डैक्स 0.24% ऊपर रहा। वहीं लंदन का फुटसी 0.03% की मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था।
यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारामन चेयर्ड अ मीटिंग टुडे इन न्यू दिल्ली टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स डिपॉजिट मोबिलाइजेशन डिजिटल पेमेंट्स एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन एडिशन टू एक्सेस टू क्रेडिट अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड अदर इमर्जिंग इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इन द मीटिंग इट वॉज नोटेड दैट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 The public sector banks performed well across all financial parameters as evidenced by improved asset quality with net NPAs declining to 0.76%, sound capital adequacy of the banks at 15.55%, net interest margin of the banks at 3.22% and highest ever net aggregate profit of 1.45 lakh crore rupees with a dividend of 27,830 crore rupees for the shareholders. We will discuss this with our expert after we have taken this call from Thane. Gurunath ji, thank you so much for holding on. Please go ahead and ask your question.
Yes, sir, namaste. Ji. Sir, mera question, chota sa question hai. Sir, ye jo UPI ke bare mein, jo डिजिटल ट्रांजेक्शन मतलब पहला जो 1 लाख की लिमिटेशन थी उसको बढ़ाकर आरबीआई ने 5 लाख कर दी है, तो ये सब मतलब कॉमन आदमी मतलब सभी के लिए है कि जो इनकम टैक्स पेयर्स है उनके लिए है, और आगे मतलब आगे चलकर मतलब ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो कितना इसका बढ़ावा मिलेगा? थैंक यू।
ये सबके लिए है, सिर्फ जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए नहीं है, और गवर्नमेंट की नीति जो है वो यही है कि डिजिटल पेमेंट्स में और बढ़ावा मिले, तो आगे ये जो 5 लाख की जो सीमा है वो भी शायद उसके बढ़ने के बहुत अच्छे आसार
हैं। जी, और जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए।
हाँ सर, ये बोले कि जैसे मैं देखा हूँ कि 2-3 साल से आईपीओ आ रहा है, तो उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है बॉम्बे, दिल्ली और एक गुजराती है, तो मतलब काफी पुराना बॉम्बे उम्बे शहर है, तो अगर ये कोई नए शहर में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाते तो वहां भी थोड़ा सा डेवलप्ड होता, और आजकल तो क्या नाम है आईटी का जमाना है, तो कहीं से भी कहीं काम हो जाता है, तो किसी भी कोने से रहे तो फंक्शन तो हो ही जाता है, तो मतलब ऐसे ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था बात।
ये तो
राय दे रहे थे,
इनका सुझाव है तो।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी दैट वी रेड वेरी क्विकली। विजय, व्हाट्स योर टेक ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गिवन दैट द एफएम अ व्हाइल बैक मेंशन्ड दैट दे शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कोर, यू नो दिस इज समथिंग दैट शी सेड जस्ट अ वीक बैक, सो given that statement and today when she said that they are doing well, in fact the figures that I read out also point towards, you know, how well the public sectors are doing, particularly when it comes to NPAs declining to 0.76%.
I think the PSU banks, I think this has been a remarkable turnaround, record profitability and the NPAs being, you know, at very very manageable levels. I think this has been a very positive thing. Now, however, what is happening now is that, the credit requirement or credit offtake is higher than the deposit mobilization. So I think when the FM talked of their core business, she was stressing that you have to also concentrate on deposits, because now you are in a good situation where there are people, the credit offtake is there. but your deposits are lagging. So I think that was a very timely reminder to the banks that, you know, you will have to think of the depositors and see how you can attract them.
Okay. And what do you think of banking as a sector for investment point of view?
Well, banking, from a long-term point, it's good. But given this current scenario where the interest rates are not, you know, when the banks are not being able to match the deposits with what is in terms with the credit offtake. So I think there is, it's a phenomenon where banks are somewhat under pressure at the moment.
Moving on, the oil prices eased today amid concern over demand in the top oil importer, China, weighed on market sentiment. The global oil benchmark Brent crude was down by 0.67% to $79.15 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate was trading down 0.72% to $76.10 per barrel when reports last came in. We'll talk to you about the oil after we have spoken to our last caller online, N.R. Prasad from Bangalore. A warm welcome. Please go ahead and ask a question, Mr. Prasad.
Hi, good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Just one question. See, Sensex rallied over 1,330 points on Friday. But on the contrary, today, FPI pullout is over 21,200 crores from Indian market. I mean, both are not really matching to the each. What we can look forward till end of this month, how the market would be faring. In fact, till quarter ending September 30th.
Okay, we've Thank got you your question, Mr. Prasad. What do you think? Why? Well, I think we did discuss this.
Well, Mr. Prasad, there is what we call, there is consolidation, time consolidation, consolidation happening. The markets are in a narrow range. What will happen by September? I think I look at it positively. However, if FIIs keep on selling, perhaps, you know, they will limit the rise in the markets.
जी और सोने और चांदी की तरफ भी एक बार नजर डाल लेते हैं. सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.07% घटकर 71,490 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.69% बढ़कर 84,200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. एक शॉर्ट कॉमेंट आपका सोने पर, विजय जी.
नहीं देखिए, अभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो होता रहता है, लेकिन हम लोगों का विश्वास है कि अगर आप निवेश सोने में करते हैं तो वो अच्छा रहेगा.
जी.
एंड द ग्लोबल डेटा रिपोर्ट रिवील्स द जॉब पोस्टिंग्स इंक्रीज्ड 7.3% ड्रिवन बाय राइजिंग डिमांड फॉर टैलेंट्स इन इंडिया एंड यूएस मार्केट्स फॉर क्वार्टर वन करंट फाइनेंशियल ईयर.
जी और विजय जी, कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और चलते हैं एक बार फिर नजर डालते हैं आर्थिक सुर्खियों पर, जिसके साथ हैं राजेश लेख.
सेंसेक्स निफ्टी एंड फ्लैट. सेंसेक्स क्लोजेस एट 80,426. निफ्टी सेटल्स एट 24,576. यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन चेयर्स रिव्यू मीटिंग. Public sector banks register highest ever net aggregate profit of 1.45 lakh crore rupees in financial year 2024. And Brent and WTI crude traded more than 0.5% down in global crude market. That's all we have in this edition of Market Mantra. We will be back with you tomorrow, same time, same frequency. Till then, happy listening.
Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.